आप लोग और आगे आ सकते हैं कृपा करके आगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य स्तोत्र शास्त्री श्रीमति डिवाइन ग्रीस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एन गौरांग। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 3, समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण
श्लोक संख्या 36। आप लोग बात ना करें, बात नहीं। सह बोले वा इदं विश्वं अमोघलीला सृजति अवती अति ना सज्जति अस्मिन् भूतेषु च अन्तर्हितः आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः सवा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति सद्गुणेशः सवा इदं विश्वममोघलीला सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति सद्गुणेशः सवा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति सद्गुणेशः बोलिए शब्दार्थ बोलिए। सः परमेश्वर वा अथवा इदं इस विश्वम प्रकट ब्रह्मांड को अमोघ लीला जिसके कर्म निष्कलंक हैं सृजति उत्पन्न करता है अवती अति पालन करता तथा संहार करता है ना नहीं सज्जति प्रभावित होता है अस्मिन् उनमें भूतेषु समस्त जीवों में च तथा अंतर्हितः भीतर रहकर आत्मतंत्रः स्वतंत्र षड्वर्गिकं भगवान के षड् ऐश्वर्यों से युक्त जिघ्रति सुगंध की तरह ऊपर ऊपर आसक्त षड्गुण ऐसा छहों इंद्रियों के स्वामी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जिनके कर्म सदैव निष्कलंक होते हैं वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छहों ऐश्वर्यों से सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर इतना ही है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का ये पहला वाक्य है, इस पर विचार करेंगे। रूपा जी कह रहे हैं तात्पर्य में भगवान और जीवों के बीच में अंतर, क्योंकि श्लोक में कुछ कहा गया है पिछले श्लोक से इस श्लोक का संबंध है। पिछले श्लोक में शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं एवं जन्माणि कर्माणि ह कर्तु रजनसजा, भगवान के बहुत से जन्म और कर्म हैं, है कि नहीं। वर्णयन किस्म कवि हो, और जो कवि हैं, कवि का मतलब विद्वान है या बुद्धिमान है, वे वर्णन करते हैं, है ना। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के जन्म और कर्मों का वर्णन करते हैं, है? भगवान के जन्म और कर्म बहुत है, असंख्य है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान के जन्म कर्मों का वर्णन करते हैं है? और जीव के भी तो जन्म और कर्म है, प्रत्येक जीव के असंख्य जन्म है और असंख्य कर्म है, तो अंतर क्या है? भगवान के जन्म कर्मों में और जीव के जन्म कर्मों में अंतर क्या है? है? अगर ऐसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं, भगवान भी जन्म लेते हैं और जीव भी जन्म लेते हैं, तो अंतर क्या है? यद्यपि पिछले श्लोक में बताया था क्या अकर्तु अजनसजा, कि वे अकर्ता हैं और अजन्मा हैं, तो भी वे जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। पिछले श्लोक में भी भगवान की एक विलक्षणता है, भगवान विलक्षण है, ये जन्म लेते हैं जबकि वे अजन्मा है, वे कर्म करते हैं जबकि वे अकर्मा है, अकर्ता है ना। लेकिन इस श्लोक में कुछ और भी भगवान की विशेषता बतलाई गई है जो जीव में नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। भगवान की जो विशेषता है वो क्या है, इस श्लोक में कहा है सृजति, वे सृजन करते हैं, वे संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले हैं भगवान, है कि नहीं। और जितने जीव हैं वो सब क्या है, भगवान की सृष्टि में ही बनते हैं। प्रत्येक जीव को शरीर प्राप्त होता है, है भगवान के द्वारा ही शरीर प्राप्त होता है, तो ये विशेषता है भगवान और जीव में, ये अंतर है, है? जैसे गीता में भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सुते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति चर अचर शरीरों की रचना करती है। चर चर शरीरों में मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जलचर हैं, तो चर और इनके शरीर की रचना भी भगवान की अध्यक्षता में होती है। प्रकृति करती है लेकिन भगवान की अध्यक्षता में होती है। अध्यक्षता का मतलब क्या है, भगवान के निरीक्षण में, भगवान निरीक्षण करते हैं कि किसका शरीर किस प्रकार से बनना है, आंखें कहाँ बननी है, कान कहाँ बनने हैं, मल द्वार कहाँ बनना है, मूत्र द्वार कहाँ बनना है, और सोचो कि कितनी बुद्धि है, जितने भी शरीर बने हैं पशुओं के, पक्षियों के, मनुष्यों के, है ना, दिमाग कहाँ बनना है, आंखें कहाँ बननी है, है? और ये जो तंत्र है आंतों का जो तंत्र है वो कैसे भोजन को पचाता है, इसके पीछे कितना दिमाग है, भगवान का दिमाग है। जीव को तो पता ही नहीं चलता है, उसका शरीर बनता है तो जीव को तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन प्रकृति बनाती है, लेकिन भगवान के दिमाग से बनाती है, अध्यक्षता से, है कि नहीं। तो अंतर है जीव में और भगवान में। किसी भी जीव को कोई भी शरीर प्राप्त होता है उसे कुछ पता नहीं चलता है कि उसको शरीर कैसे प्राप्त हुआ और शरीर कैसे बना और कैसे बढ़ता है, कैसे क्षीण होता है और कैसे शरीर छूटता है, जीव को पता नहीं चलता, जीव बिल्कुल विवश है। तो भगवान की ये विशेषता है, जीव में वो विशेषता नहीं है। नहीं तो बहुत से मूर्ख लोग कहते हैं भाई भगवान में जीव में क्या अंतर, हम भी अवतार हैं, जैसे भगवान ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, तो जितने लोग हैं सब अवतार हैं, लेकिन नहीं है। जो जीव है ये अवतार नहीं है, ये तो पतन है। जीव जब आता है आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में, जिसको क्या कहते हैं पतन, ये पतित जीव है। जब भगवान आते हैं आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में, तो क्या कहा जाता है अवतार। भगवान आते हैं तो उतर के आते हैं, और जीव जब आता है तो गिर के आता है, और जब गिरता है तो उसकी बड़ी बुरी हालत होती है, है कि नहीं? जैसे मकान से नीचे कोई बच्चा गिर जाए, है ना, तो उसकी बड़ी बुरी हालत होगी। और पैदा है वो उतर के आता है, है जी, तो उतर के आते हैं तो भगवान अवतार कहलाते हैं। और जीव जब आता है तो उसको फॉल डाउन अंग्रेजी में बोलते हैं, फॉल डाउन पतन। हम लोग फॉलन सोल्स, हम लोग पतित आत्माएं है कि नहीं? तो हमारे जन्मों की भगवान के जन्मों से कोई तुलना नहीं है। तो पहला जो अंतर है जीव और भगवान के बीच में, प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है, भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। हालांकि जीव भी बनता नहीं है, लेकिन जीव का शरीर तो बनता है ना, इस तरह से ये अंतर है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं यहां पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, श्लोक में देखिए है अमोघ लीला। अमोघ लीला का मतलब क्या है, जिसकी लीला अमोघ है। अमोघ का मतलब क्या है, जो व्यर्थ ना हो। मोघ माने होता व्यर्थ है, जैसे गीता भगवान कहते हैं मोघाता मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानामिचेतसः। जो कृष्ण को मनुष्य समझते हैं और परमेश्वर नहीं समझते हैं तो उनके मोघ आस्था, उनकी आस्थाएं व्यर्थ हैं, मोघ कर्माणो उनके कर्म व्यर्थ हैं, और मोघ ज्ञाना और ज्ञान भी उनका व्यर्थ है ना। तो मोघ का मतलब व्यर्थ है, वो जितने कर्म करते हैं सब बेकार हो जाता है, कोई फल नहीं मिलता है, उनका जितना ज्ञान है वो सब बेकार हो जाता है, निष्फल है ना। तो अमोघ का मतलब क्या हुआ, अमोघ का मतलब सफल। अमोघ लीला का मतलब क्या हुआ, जिनकी लीलाएं हमेशा सफल होती हैं। तो भगवान को अमोघ लीला कहा गया है, अमोघ लीला है। जैसे सूचित होता है कि उनकी सृष्टि में कुछ भी सोचने नहीं है, तो यहां पर लीला का मतलब प्रभुपाद जी ले रहे हैं क्या, सृष्टि का निर्माण। भगवान के द्वारा जो सृष्टि बनती है तो ये भी भगवान की एक लीला है, है ना। और ये जो सृष्टि बनती है इसके पीछे कुछ कारण है, मतलब व्यर्थ में नहीं है, अमोघ लीला वो जो है, एक सफल कारण है जो भगवान ये सृष्टि बनाते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, उनकी सृष्टि में कुछ भी सोचनी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम कर लिया फिर बाद में आप शोक करते हैं। कई बार आप कुछ काम करते हैं उसके बाद फिर आपको शोक होता है, पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्यों किया, मैंने तो गलत काम किया। तो भगवान के कार्यों में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी काम भगवान के द्वारा ऐसा होता हो जिसमें आगे चल करके कुछ पता चले कि नहीं नहीं ये तो गलती थी, ऐसा नहीं है। भगवान के जितने भी कार्य हैं सब पूर्ण होते हैं, पूर्ण सफल होते हैं, भगवान का ज्ञान भी पूर्ण है कि नहीं। तो ये सृष्टि का जो कार्य है भगवान की, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भगवान की योजना है। ऐसे नहीं कि अपने आप हो गई सृष्टि, या भगवान ने कर दी, शायद बेहोशी में कर दी होगी, कुछ होश नहीं था और बाद में सोचा होगा कि अरे ये कैसे सृष्टि हो गई, ये क्यों सृष्टि बन गई। नहीं, भगवान जितने भी कार्य करते हैं उन सब के पीछे एक पूर्ण उद्देश्य होता है, एक सफल उद्देश्य होता है। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं अमोघ लीला का मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद लिखते हैं जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं व्यग्र रहते हैं। उनकी सृष्टि में, जो लोग उनकी सृष्टि में, किसकी सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में। भगवान की सृष्टि मतलब आध्यात्मिक जगत में, भगवान की अपनी सृष्टि है यानी वो आध्यात्मिक जगत है। तो जो लोग आध्यात्मिक जगत में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, कुछ डिस्टरबेंस करते हैं, तो उनको कहां भेज दिया जाता है? इस भौतिक जगत में। हम सब जीव जो है इस भौतिक जगत में आए हैं, क्यों आए हैं? कुछ डिस्टरबेंस किया होगा भगवान के सामने, तो यहां आए हैं और यहां पर अब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अमोघ लीला का मतलब यह है, भगवान का जो कार्य है वो बिल्कुल अमोघ है। जो लोग उनके धाम में कुछ गड़बड़ी पैदा करते हैं तो उनको इस देवी धाम में भेज दिया जाता है, इस माया जगत में भेज दिया जाता है। तो वह अशांति पैदा करने की कोशिश की तो यहां पर वो जीव अशांति पा रहे हैं। तो भगवान का जो है ये कार्य इस प्रकार से अमोघ है। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं क्योंकि वे छह ऐश्वर्यों धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से संपन्न हैं। अब यहां पर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, भगवान छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो इसमें कौन सा शब्द है ऐसा जिसके कारण प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं? साठ वर्गीकम, साठ वर्गीकम, सठ का मतलब है छह, है ना, छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं। भगवान, वान का मतलब होता है जिसके पास है, और भग माने ऐश्वर्य, छह प्रकार के ऐश्वर्य। पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा की है, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य इस सहस्रिया ज्ञान वैराग्योश्च शरण भग इति ऋणा। छह प्रकार के भग हैं। पहला क्या है, संपूर्ण धन, ऐश्वर्य समग्र से और वीर्य से संपूर्ण बल, फिर यशसा संपूर्ण यश, श्रिया संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान वैराग्य संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, ये छह प्रकार के भग हैं। और भगवान के अंदर ये छह के छह ऐश्वर्य संपूर्णता से रहते हैं, इसलिए भगवान को जो है ना कहा जाता है। वैसे भगवान और भी किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसके पास छह में से कोई भी एक ऐश्वर्य हो, जैसे कोई बहुत विरक्त है तो उनको भी भगवान कहा जाता है, जैसे भगवान नारद, भगवान व्यास, भगवान सुखदेव, है कि नहीं, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, है ना। तो इनके पास जो है कुछ विशेष वैराग्य है या कुछ विशेष ज्ञान है तो उनको भगवान कहा जाता है। लेकिन गीता में कृष्ण को क्या कहा गया है, गीता में जहां जहां कृष्ण कहते हैं तो क्या कहा जाता है, क्या शब्द है, श्री भगवान। कृष्ण को श्री भगवान कहा जाता है। या श्रीमद् भागवत में कृष्ण को क्या कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। यानी कृष्ण साधारण भगवान नहीं है। गीता में श्री भगवान या श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहा गया है। स्वयं भगवान का मतलब है कृष्ण स्वयं भगवान है, मतलब उन्हें किसी ने बनाया नहीं भगवान, बाकी जो भगवान है वो बनाए जाते हैं। कृष्ण अपना ऐश्वर्य किसी को दे दें कुछ भी तो वो भगवान बन सकता है। कृष्ण अपना ज्ञान का कुछ अंश किसी को देते हैं तो वो भगवान बन जाता है, है ना। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्हें किसी ने भगवान बनाया नहीं, स्वयं भगवान। अब हम विचार करेंगे भगवान के छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं, है ना, कैसे हैं, सात वर्गीकम चूंकि शब्द है, है? और प्रभुपाद जी कहते हैं छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं भगवान में, जैसे संपूर्ण धन, भगवान के पास संपूर्ण धन है, है? तो इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं कैसे, जैसे उनका धाम, भगवान का धाम है तो उसका वर्णन हुआ है क्या, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। वहां के जो महल हैं वो पत्थर के और ईंट के बने नहीं हैं। भगवान के धाम के जो महल हैं वो पत्थर और ईंट के बने नहीं हैं, किस चीज के बने हैं, चिंतामणि के, चिंतामणि, है ना। आजकल तो लोग कहते हैं भाई ये तो काल्पनिक चीज है, ये तो कोई वास्तविक है नहीं, कोई ऐसी चीज होती नहीं है। चिंतामणि का मतलब क्या है? एक ऐसी मणि जो आपकी सब कामनाओं की पूरी करे, सब कामनाओं को पूरा करे, वो चिंतामणि। अगर आपके पास चिंतामणि है तो आपकी जितनी इच्छाएं वो सब पूरी होती रहेंगी, आप जो इच्छा करोगे वो सब पूरी होती रहेंगी, चिंतामणि उसको कहते हैं, है ना। या प्रभुपाद जी इसका अर्थ बताते हैं पारसमणि। पारसमणि की विशेषता क्या है? लोहे को छुए तो सोना बन जाए। ये भी लोग सोच नहीं सकते ऐसी भी कोई मणि हो सकती है, और वहां पर ऐसी मणियों से महल बने हैं, ईंट और पत्थर नहीं है, ऐसी मणियों से महल बने। सोचिए कृष्ण के पास कितना धन है। चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्ष्य आवृतेशु, लाखों कल्प वृक्षों से वो घेरे हैं महल। भगवान के धाम में जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या बताई जाती है? आप उस वृक्ष के नीचे बैठे तो जो चाहे वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये कल्प वृक्ष, तो आप सोचिए भगवान के पास कितना धन है, क्योंकि धाम में ऐसे वृक्ष हैं। या प्रभुपाद जी कल्प वृक्ष की एक और विशेषता बतलाते हैं, वो क्या है कि सब ऋतुओं में सब प्रकार के फल देता है। जितने आप फल चाहो और जो भी फल चाहो और किसी भी समय चाहो वो वृक्ष देता है, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। तो ऐसे कल्प वृक्षों से घेरे हैं वो महल। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिः अभिपालयन्तम्। और वहां के जो गौवे हैं वो कौन सी जाति की गौवे हैं? सुरभि जाति की गौवे हैं, सुरभि। तो प्रभुपाद जी सुरभि की विशेषता बतलाते हैं क्या, कि जितनी मात्रा में दूध आप चाहें जिस समय चाहें वो देती है, वो सुरभि गाय एक विशेष जाति है गाय की। लेकिन अगर इसको कामधेनु माना जाए तो कामधेनु का मतलब जो भी कामनाएं आप चाहो वो सब पूरी करती है कामधेनु, तो ऐसी गौवें हैं। तो आप सोचिए कि कृष्ण के पास कितना धन है। या फिर प्रभुपाद जी और बताते हैं कृष्ण के धन की कुछ झलक। जब कृष्ण द्वारका में थे तो 16108 उन्होंने विवाह किए, तो इतने महल द्वारका में तैयार हुए, एक एक महल, एक एक पत्नी के लिए एक एक महल तैयार हुआ, है ना। और वो महल भी इसी प्रकार के थे, साधारण महल नहीं थे। और वहां पर रत्नों के दीप जलते थे, जैसे यहां पर बल्ब जलते हैं, है कि नहीं, लेकिन लाइट फेल हो जाती है तो इस सब अंधेरा हो जाता है। रत्नों के दीप में कोई दिक्कत नहीं है, रत्नों के दीप जैसे बल्ब से प्रकाश फैलता है या ट्यूबलाइट से प्रकाश फैलता है, ऐसे रत्नों के दीपक है, रत्नों से प्रकाश फैल रहा है, उसमें कोई लाइट फेल होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रकाश निकलता हमेशा, मणियों से प्रकाश निकलता था, ऐसी मणियां थी कृष्ण के महल में, है ना। तो ये कृष्ण का धन है। और भी कृष्ण के पास कितना धन है आप कुछ और भी सोच सकते हैं। गर्ग संहिता में लिखा है कृष्ण जो है जितना भी किसी भी व्यक्ति के पास धन है वो सब कृष्ण का ही है और किसी का नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं कृष्ण का है? कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मैं मृत्यु के रूप में सब छीन लेता हूं। ये जितना भी धन इकट्ठा किया है वो कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता है, लेकिन कृष्ण छीन लेते हैं और जिसको चाहे है वो धन दे सकते हैं। कैसे? उद्भवश्चा भविष्यताम, किसी को उस परिवार में जन्म दे देते हैं तो उसको धन अपने आप मिल जाता है। मृत्यु के रूप में उसका सब कुछ छीन लेते हैं। इतना बड़ा धनी व्यक्ति है, करोड़पति है, और कृष्ण मौत के रूप में आकर के उसका सब छीन लेते हैं, उसको चूहा बना देते हैं, अब बिल्लो चूहा बन जाओ, उसका सब धन छीन लिया, चूहा बना दिया। और किसी को भी, चूहे को भी जो है ना, हाँ, उस परिवार में जन्म देते हैं और वो करोड़पति बन जाता है। तो कृष्ण जो है ना, मतलब कृष्ण ही वास्तव में धनी है। असली जो धनी व्यक्ति है, उसी को कहा जाए जो अपने साथ धन लेके जाए और धन लेके आए। कृष्ण वास्तव में धनी व्यक्ति है, जब वो जन्म लेते हैं तो सब कुछ अपने साथ लेके आते हैं, है? सब कुछ लेके आते हैं, है? कौस्तुभ मणि उनके गले में है, है? और सब संपूर्ण श्रृंगार उनका जो ना साथ में है जब कृष्ण आते हैं, तो वो धनी व्यक्ति है। कौन धनी व्यक्ति है जो कह सकता है कुछ धन लेके आया अपने साथ, बिल्कुल नग्न वो आता है इस संसार में, कुछ भी लेकर नहीं आता है और कुछ लेके जाता भी नहीं है। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि इतना धनी था वो, उसे सब लूटा था, राजाओं को लूट करके बहुत धन इकट्ठा किया था, लेकिन बाद में उसने ये कहा था कि जब मैं मरूं तो मुझको दफनाओगे तो ऐसे दफनाना, मेरे दोनों हाथ खाली ऊपर निकाल देना, मुझे ऐसे दफनाना, मैं खड़ा जमीन के ऊपर मेरे दो हाथ बाहर निकले रहे, जिससे सबको पता चले कि इतना बड़ा धनी व्यक्ति भी खाली हाथ जा रहा है। तो कोई अपने साथ धन लेके नहीं जाता है, लेकिन कृष्ण जो है ना, भगवान के सामने काल भी ठहर नहीं सकता है, तो इसलिए भगवान ही सबसे ज्यादा बलवान है, ये समझना है कि नहीं? काल के सामने सबका बल समाप्त हो जाता है, कोई कितना भी बड़ा बलि क्यों ना हो, हाँ, काल के सामने उसके सब बल समाप्त हो जाता है कि नहीं? तो इस तरह से अगर देखें तो कोई बलि नहीं है भगवान के अलावा, भगवान ही सबसे बलि है ना? और संपूर्ण धन संपूर्ण बल, फिर भगवान का संपूर्ण यश। अब यश की चर्चा करो, भगवान के पास संपूर्ण यश है, आप विचार करो भगवान के यश के बारे में, भगवान का कितना यश है। जैसे कि शेष जी भगवान के यश का वर्णन कर रहे हैं, भगवान का यशोगान कर रहे हैं, है? अपने हजार मुखों से कर रहे हैं, है? और अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उनको आदेश मिला था कि जब भगवान का यशोगान समाप्त हो जाए तो अपने सिर से पृथ्वी को उतार दें। शेष जी, शेष जी ने पूछा था कि अपने सिर में मैं पृथ्वी को धारण करूं कब तक, तो भगवान ने कहा कि ठीक है मेरा गुणगान करो, और जब मेरा मेरे गुण समाप्त हो जाए तो पृथ्वी को उतार देना, आपका काम समाप्त हो गया। तो शेष जी अंत नहीं पा रहे हैं भगवान के गुणों का, है ना? ऐसे भगवान के गुण हैं। युवा अनंतस्य गुणान अनंतान हरे विमातुम सतु बाल बुद्धि रजान से भूमेर गणित कथनचित तथा नैवाखिल सत्य धाम नहा। तो भगवान जो है अनंत है, उनके गुण अनंत है, जो कोई गिनने का प्रयास करता है वो बाल बुद्धि है, बच्चे जैसा दिमाग है उसका। रजान से भूमेर गणित कथनचित, पृथ्वी के जो कण है धूल के कण, शायद कोई गिन ले, कोई गिन सकता है पृथ्वी में धूल के कण? शायद कोई गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों को कोई नहीं गिन सकता, भगवान के असंख्य गुण है। वो तो 64 गुण है, ये हम लोगों के समझने के लिए रूप गोस्वामी दिए हैं, भगवान के 64 गुण जो है, जो कृष्ण के हैं, ये तो हम लोगों के समझने के लिए हैं कि हम लोग कितना समझ पाएंगे, वो 64 गुण भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान के तो अनंत गुण है कि नहीं? और भगवान का यश आप सोचो कहां कहां तक फैला हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान का यश फैला, असंख्य ब्रह्मांडों में भगवान का यश फैला हुआ है कि नहीं? जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दैनिक समाचार पत्र निकाला था, वो क्या नाम था उसका, नदिया प्रकाश, दैनिक समाचार पत्र निकाला था जिसमें भगवान के गुणगान पर ही वो समाचार पत्र था, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ये दैनिक पत्र आप क्यों निकाल रहे हो, कितना लिखोगे आप इसमें? भगवान का गुणगान, आप दैनिक समाचार पत्र निकाल रहे हो है? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या कहा, भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या कहा कि एक शहर में अगर 12-12 समाचार पत्र निकलते हैं, दैनिक समाचार पत्र निकलते हैं है? तो फिर भगवान का जो धाम है वो तो ऐसे असंख्य गुना बड़ा है, वहां पर और भी कार्यकलाप हो रहे हैं। कितने कार्यकलाप हो रहे हैं भगवान के? भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है इस भौतिक जगत की तुलना में कितना है? 3 गुना बड़ा है, है? एक पाद विभूति है इस संपूर्ण भौतिक जगत, और वो भगवान का आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति है, है? तो वहां पर भगवान कितने कार्यकलाप हो रहे हैं। अगर एक सेकंड में भी अगर एक अखबार निकाला जाए तो भी कम पड़ेगा। सोचो भगवान के इतने गुण और कर्म नए नए हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो एक सेकंड में भी एक समाचार पत्र छापा जाए तो भी पर्याप्त नहीं है। भगवान का यश, हाँ हाँ, तो भगवान का ऐसा यश है कि नहीं? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, रसखान कवि ने लिखा है ना। तो सब बड़े बड़े जो देवता हैं, शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, अभी संसार में कोई एक मूर्ख व्यक्ति है जो अपने को भगवान समझता है वो अलग बात है, लेकिन भगवान वो है कि जो देवता हैं, गंधर्व हैं, ऋषि हैं, सब उनकी वंदना करते हैं। तो भगवान का ऐसा यश है, भगवान के ऐसे गुण हैं। और वास्तव में और कोई यशस्वी नहीं है, कोई व्यक्ति और यशस्वी नहीं है, है? क्योंकि यश अगर उनका होता भी है ना, तो वो नहीं होते, वही चले जाते हैं, फिर यश समाप्त हो जाता है। किसी का भी यश, मान लो किसी का भी नाम कभी हुआ और लोग जो ना उसकी तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे, लेकिन आगे चल करके क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है, उसके कार्य समाप्त हो जाते हैं, उसके गुण समाप्त हो जाते हैं, कोई नहीं जानता है कि नहीं है? जो भगवान से जुड़े होते हैं उनका यश रहता है। अगर असल में अगर यशस्वी बनना है तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था, कृष्ण प्रिय चैतन्य महाप्रभु पूछा था, अगर यशस्वी बनना है तो क्या करना चाहिए, असली यशस्वी कौन है? भगवान का भक्त है। जो भगवान का गुणगान करे तो वो यशस्वी होता है ना। तो ये जो है भगवान का गुण, भगवान का यश। इसके बाद भगवान का सौंदर्य, भगवान में संपूर्ण सौंदर्य है, इसकी चर्चा करें। भगवान में संपूर्ण सौंदर्य है, कैसे? कंदर्प कोटि कमनी विशेष शोभम, कृष्ण की जो विशेष शोभा है वो कैसी है? कोटि कंदर्प कमनी है, कमनी का मतलब कामना जिसकी की जाए, कमनी जिसे गमनीय जहां जाना चाहिए, कमनी का जिसकी कामना करनी चाहिए। तो करोड़ों कंदर्प जिस शोभा की कामना करते हैं ऐसी शोभा है भगवान की। और कंदर्प क्या होता है? देवताओं में सबसे सुंदर व्यक्ति कंदर्प होता है, मनुष्यों में सबसे अधिक सुंदर व्यक्ति भी साधारण देवता के सामने भी बंदर जैसा लगेगा, देवताओं में ऐसी सुंदरता होती है। इस मनुष्यों में जो है ना सबसे सुंदर व्यक्ति को खड़ा करो और किसी देवता के सामने खड़ा करो तो बंदर जैसा लगेगा, देवता इतने सुंदर होते हैं। और देवताओं में सबसे सुंदर कामदेव है ना, फिर तो सोचो कामदेव कितना सुंदर है। लेकिन ऐसे करोड़ों कामदेव भी फीके पड़ते हैं कृष्ण के सामने है ना, तो कृष्ण की ऐसी शोभा है, तो कृष्ण में कितना सौंदर्य है। इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? मदन मोहन, कामदेव को मोहित करते हैं है ना। तो ये कृष्ण की सुंदरता है ना। और कृष्ण की सुंदरता कैसी है? जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, गोपियां जब कृष्ण का दर्शन करती हैं है? तो उनको जो है पलकें बंद होने में बड़ी बाधा पड़ती है, उनकी जब पलकें बंद होती हैं कृष्ण के दर्शन में तो बड़ी बाधा पड़ती है, और यहां तक कि उनकी हिम्मत कि ब्रह्मा जी को भी जो है ना वो गाली देते हैं, ब्रह्मा जी की भी निंदा करते हैं कि ब्रह्मा इतना मूर्ख है कि उसने पलकें क्यों बनाई, अगर कृष्ण का दर्शन कराना था तो पलकें क्यों बनाई। ये ब्रह्मा जी की मूर्खता, इतनी हिम्मत गोपियों की, क्योंकि पलकें बंद होने में उनको इतनी बाधा पड़ती है कृष्ण का दर्शन करने में है? कि चैतन्य महाप्रभु युगायतम निवेशन एक युग के बराबर लगता है पलकें बंद होना। तो कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है कि गोपियां कृष्ण को देखने में पलकें बंद होने में बड़ी बाधा अनुभव करती है, लेकिन आप किसी भी चीज को देखें क्या आपको बाधा पड़ती है पलकें बंद होने में? नहीं होती। कृष्ण का सौंदर्य देखो कैसा है, है ना? तो ये जो है कृष्ण का सौंदर्य है। और आप कुछ और बता सकते हैं कृष्ण के सौंदर्य के बारे में? भगवान जब अपनी छवि देखते हैं तो खुद मुक्त हो जाते हैं। और इस संसार में भी जो सौंदर्य आया, इस संसार में सौंदर्य आया, जैसे फूलों में सुंदरता होती है, फूल सुंदर होते हैं, तो फूल कैसे बनते हैं, कैसे खिलते हैं? कृष्ण की हंसी से। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या कोई समझा सकता है कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक कि फूल कैसे खिलते हैं? फूल कैसे खिलते हैं कोई वैज्ञानिक नहीं समझा सकता क्या कारण है फूलों के खिलने का। कृष्ण की हंसी से फूल खिलते हैं, कृष्ण की मुस्कान से फूल खिलते हैं। मतलब जो सौंदर्य आया है फूलों में वो कृष्ण की मुस्कान का है सौंदर्य। कृष्ण की मुस्कुराहट कितनी सुंदर है, जैसे फूल खिलते हैं, फूलों में इतनी सुंदरता आई है कि नहीं? और भी कोई सुंदर है कृष्ण के अलावा? नहीं, और कोई सुंदर नहीं है। अगर सुंदरता अगर देखना है किसी की वास्तविक सुंदरता तो एक लिक्विड ब्यूटी की कथा प्रभुपाद ने सुनाई, तरल सौंदर्य। एक स्त्री बड़ी सुंदर थी है कि नहीं, एक प्रोसेस पर मोहित हो गया है? तो उस स्त्री ने कहा कि ठीक है 7 दिन के बाद मुझसे मिलना। तो उसने क्या किया, जुलाब लिया और उससे जितना उल्टी और मल मूत्र निकला उसको एक बर्तन में डालती गई। 7 दिन के बाद उसका जो है ना पूरी सुंदरता समाप्त हो गई है? तो पुरुष आया उसके घर में तो देखा वो तो लड़की नहीं है, है? तो वो पूछता है वो लड़की कहाँ है जो सुंदर थी? वो कहती है मैं ही हूं। तो कहते तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई? तो कहती मैंने अपनी सुंदरता अपने शरीर से अलग निकाल के रख दिए है। देखना चाहते हो? कहते हाँ देखना चाहता हूं, तो मेरी सुंदरता देखो। तो उसने वो जो बर्तन है वो खोल दिए, इतनी बदबू आई, ये सुंदरता। तो वास्तव में और किसी में सुंदरता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई शरीर अगर सुंदर दिखाई पड़ता है तो आत्मा के कारण है। कोई भी सुंदर लड़की हो बहुत सुंदर लग रही है, जैसे आत्मा निकल जाती है तो उसके शरीर को फिर कोई नहीं छूना चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है। एक सुंदर से सुंदर स्त्री भी है? अगर तुरंत मान लो शरीर छोड़ दे तो उसका जो सौंदर्य है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जरा भी सुंदर नहीं रहता है उसको देखने में। तो वास्तव में जो सुंदरता है वो आत्मा की है, और वो आत्मा कृष्ण का अंश है। यानी कृष्ण की ही सुंदरता से इस भौतिक जगत में कुछ सुंदरता अगर दिखाई देती है तो कृष्ण की सुंदरता से है। यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव। कोई भी अगर सुंदरता है, वास्तव में इस जगत में कुछ भी सुंदरता नहीं है, अगर है सुंदरता तो कृष्ण की ही। और कहीं पर यह बताया गया है कि संपूर्ण जगत की सुंदरता इकट्ठी कर दी जाए तो भगवान के शरीर की एक रोम की सुंदरता के बराबर नहीं है। एक डायरी है गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसमें हर पेज में कुछ ना कुछ शब्द लिखे रहते हैं। तो एक स्थान पर यह लिखा हुआ है कि संपूर्ण जगत का सौंदर्य मिलकर के भी भगवान के शरीर के एक रोम की सुंदरता के बराबर भी नहीं है। भगवान में कैसी सुंदरता है,
है ना। तो ये वास्तव में सुंदरता है भगवान में।
अच्छा, सौंदर्य हो गया ज्ञान, धन बल यश सौंदर्य और ज्ञान। अब भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है, है? इसके इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है। हाँ बताओ। 64 दिन में सांदीपनी मुनि से उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, 64 दिन और रात में। इतनी जल्दी प्राप्त कर लिया और भगवत गीता का संदेश दिया, तो कोई तैयारी थोड़ी की थी कृष्ण ने, है? जब गीता का संदेश देना था तो कोई तैयारी थोड़ी की थी, ऐसे खड़े खड़े बता दिया, 45 मिनट में ही प्रवचन कर दिया। और कितने बड़े बड़े जो विद्वान हैं, अध्ययन करते रहते हैं भगवत गीता का, है? उसमें रिसर्च करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं और नए नए अर्थ निकलते रहते हैं। कृष्ण का ऐसा ज्ञान है। जब अभी आजकल कोई तथाकथित महात्मा है वो तो बता रहे हैं कि नहीं नहीं कृष्ण तो तैयारी करते रहे, उनको गीता का प्रवचन देना है। अभी कोई ऐसे भी महात्मा है जिनके जो प्रवचन दे रहे हैं और लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कृष्ण ने पहले तैयारी की थी गीता का प्रवचन करने की, उनको पता था कि उनको गीता का प्रवचन करना है तो तैयारी कर रहे थे। इन कृष्ण को क्या तैयारी करना है? जब वो कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं तो पहले से हैं, उनको कहने में क्या दिक्कत है? वो जब हैं सब। जब वो कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सोएते सचरातरम, ये संपूर्ण चराचर की रचना प्रकृति मेरी अध्यक्षता में करती है, तो इसमें उनको क्या कुछ तैयारी करनी पड़ी? कोई राजा है वो कहता है मैं राजा हूं, तो उसको कहने में क्या कोई दिक्कत होती है? भगवान के ये जो भगवत गीता का ज्ञान है तो भगवान का तो स्वाभाविक ज्ञान है, भगवान को क्या उसमें तैयारी करने की जरूरत है? हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हम लोग जो है ना तैयारी करते हैं, समझने की तैयारी करते हैं, सुनने की तैयारी करते हैं, सुनाने की तैयारी करते हैं, ये हम लोगों का काम है। भगवान को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है ना, भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है और सबके हृदय में बैठे हुए हैं, है ना, और सबके हृदय की बात को जानते हैं भगवान, है ना। और भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है। बारह करोड़ साल पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया था भगवान के पास, ऐसा ज्ञान है, है ना। हाँ प्रभु, सृष्टि की रचना का ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं सबसे पहले। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, जिसमें बड़े बड़े सूर यानी बड़े बड़े विद्वान भी मोहित होते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। और गीता में भगवान कहते हैं भुवन में विति तानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि तुम वेद है परंतव, कि जितने भी जन्म हुए हैं मेरे और तुम्हारे, हे परंतप तुम हो बहुत तपस्वी लेकिन तुम नहीं जानते उनको और मैं सब जानता हूं। भगवान अपने भी जन्मों को जानते हैं सब जन्मों को, और आपके भी सब जन्मों को जानते हैं, आपके करोड़ों करोड़ों जन्म हुए हैं, हा? तो एक करोड़ जन्म पहले आप कहां थे वो भी भगवान को पता है, और ये जानने के लिए उनको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान सब जानते हैं। तो भगवान के पास ऐसा ज्ञान है। और सातवें अध्याय भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन, पहले जितने हुए हैं उनको मैं जानता हूँ, इस समय जो हैं उनको जानता हूँ, आगे भी जो होंगे उनको भी मैं जानता हूँ, तो मुझे कोई नहीं जानता। तो कृष्ण के पास इतना ज्ञान है ना, तो इस प्रकार से संपूर्ण ज्ञान है। इसके बाद हाँ बहुत धन्यवाद। ये जो वेद है, वेद मंत्र है, ये भगवान के श्वास उत्पन्न हुए हैं, वेद जो है ज्ञान का भंडार है, ये भगवान के बिना किसी प्रयास के श्वास से उत्पन्न हुए वेद मंत्र। सोचो क्या भगवान भगवान का क्या ऐश्वर्य है, भगवान के श्वास से ही उत्पन्न हुए सब वेद मंत्र। धन्यवाद। अब संपूर्ण ज्ञान, इसके बाद संपूर्ण वैराग्य, भगवान के पास संपूर्ण वैराग्य है। इसका उदाहरण हाँ धन्यवाद। उनके 56 करोड़ यदुवंशियों का जो परिवार था, एक सेकंड में उन्होंने सबको त्याग दिया, है कि नहीं, विनाश कर दिया,
भगवान के पास इतना वैराग्य है। और प्रभुपाद जी और भी उदाहरण देते हैं गोपियों का, गोपियों का त्याग कर दिया उन्होंने, वृंदावन की गोपियों का त्याग कर दिया है ना, जो कि देवांगनाओं से ज्यादा सुंदर थी गोपियां, उनका त्याग कर दिया एक क्षण में। और धन्यवाद भगवान का ये त्याग गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा आदर्श है कि वो उठते हैं मंगल आरती के लिए। भगवान 16108 उनकी पत्नियां हैं लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सूर्योदय के 2 घंटे पहले भगवान निद्रा त्याग देते हैं, और स्त्रियों को, उनकी स्त्रियों को उस समय बड़ा अशुभ मालूम पड़ता है, वो समय बड़ा शुभ होता है, चूंकि भगवान त्याग देते हैं उनकी स्त्रियों को जो है ना ये समय बड़ा अशुभ माना मालूम पड़ता है, ये बेकार समय है, क्योंकि भगवान सैया को त्याग देते हैं। तो ये भगवान के अंदर त्याग है। और भी आप कह सकते हैं भगवान में त्याग। हाँ बहुत धन्यवाद। भगवान जेल में प्रकट हुए, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान जेल में प्रकट हुए, ये भगवान का त्याग है। और हाँ 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 भगवान राम ने वनवास स्वीकार किया, जंगल में रहना स्वीकार किया, ये भगवान का त्याग है कि नहीं। और कोई हाँ हाँ अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ये भगवान के अंदर वैराग्य है। इतना बड़ा जो ना कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, कोई बहुत बड़ा मंत्री हो, वो किसी गाड़ी चलाएगा, भगवान चला रहे हैं। पार्थ सारथी हाँ सुदामा जी के चावल खाते हैं, चिवड़े खाए है ना, ये भगवान का त्याग है ना। तो ये सब जो है ना भगवान के त्याग, भगवान के समान त्याग किसी में नहीं है। और भी भगवान जो है अपने भक्तों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वह मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। उनको जितना भी ऐश्वर्य है वैकुंठ का, वो कुछ भी उनको सुख नहीं देता है, वो अपने भक्तों की संगति में सुख प्राप्त करते हैं। भगवान में ऐसा ऐसा त्याग है ना, अपने भक्तों को अपना संपूर्ण ऐश्वर्य दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, भगवान में ऐसा त्याग है। तो ये भगवान के ये गुण है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है, इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं, उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए होती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं, वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। इसमें शब्द है सृजति अवति अति। सृजति का मतलब रचना करते हैं सृष्टि की, अवधि का मतलब पालन करते हैं, और अति का मतलब संहार कर देते हैं, और किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना संहार करते हैं। इसमें क्या है वो शब्द जिससे प्रभुपाद लिखते हैं कि वो प्रभावित नहीं होते हैं, इस श्लोक में कौन सा शब्द है ऐसा भगवान प्रभावित नहीं होते या आसक्त नहीं होते ना सज्जते, ना सज्जते, वो इसमें आसक्त नहीं होते हैं है ना। ये सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, इसमें वो आसक्त नहीं होते हैं भगवान। इसे गीता में भी भगवान कहते हैं चमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, वे जो कर्म है वो मुझे नहीं मानते हैं। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं उदासीन हूं उन कर्मों में, बिल्कुल अनासक्त हूं। और तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं प्रकृतिर गुण सम्मुना सज्जन्ते गुण कर्मसु, प्रकृति गुणों से मोहित होने के कारण जो मूर्ख है वो गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं, सज्जन्ते गुण कर्मसु है ना। और तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन इति मत्वा न सज्जते, जो तत्वज्ञानी है वो आसक्त नहीं होते हैं इन सब कर्मों में। तो भगवान जो है भगवत गीता की ऐसी विधि बतलाते हैं जिससे कोई व्यक्ति जो है आसक्त ना हो, प्रभावित ना हो इस भौतिक जगत से। तो भगवान जो है प्रभावित नहीं होते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंधि पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। हाँ, जब आप सूंघते हैं किसी फूल की सुगंध को, आप जब लेते हैं तो फूल को आप जो है पास में रखते हैं, अपनी नाक के पास में रखते हैं, है ना। लेकिन फूल अगर गीला भी है तो भी आप गीले नहीं होते हैं, आप सूंघ लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान जो है भौतिक जगत में जो है उसी प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति फूल को सूंघता है ना। फूल गीला है तो भी आपकी नाक गीली नहीं होती है और आप उसको सूंघ लेते हैं पास से, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत में प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसमें वो शब्द है, वो कौन सा शब्द है जिसमें कि बताया गया है कि भगवान आसक्त नहीं होते, जैसे सूंघने से कोई व्यक्ति छूता नहीं किसी चीज को, सूंघ करके ही वो सुगंध। जिग्रति, जिग्रति। तो भगवान जो है उसी प्रकार इस जगत में जो है सृष्टि पालन और संहार का कार्य करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति फूल को सूंघ रहा है लेकिन आसक्त नहीं होता है। अतएव ईश्वरी तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। तो भगवान के पास कोई नहीं पहुंच पाता है, भगवान इस जगत से बिल्कुल अलग रहते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है बिना भक्ति के। तो इसमें कुछ भगवान की विशेषताएं बतलाई गई हैं जो जीव में नहीं है, है ना। एक शब्द है आत्मतंत्रा, आप देख रहे हैं आत्मतंत्रा, भगवान आत्मतंत्र हैं। भगवान जन्म लेते हैं और भगवान कर्म करते हैं सब, तो अपनी इच्छा से ही वो चुनते हैं कि किसको माता पिता बनाना है, किसको अपना सेवक बनाना है, किसको अपना भाई बनाना है, किसको अपना मित्र बनाना है। आत्मतंत्र है पूरी तरह से। आप जब जन्म लेते हैं तो आपके बस में कुछ भी नहीं है, आपको कर्म भी करने पड़ते हैं बंधे होने के कारण, समाज में परिवार में आप बंधे हैं तो आपको कर्म भी करना पड़ता है। भगवान में कोई बंधन नहीं है, ना तो जन्म का ना कर्म का, कोई बंधन नहीं है, आत्मतंत्र है। और भगवान की क्या विशेषता है, भूतेषु चांतरहित है, सब प्राणियों में अंतरहित है, अंतर्यामी है भगवान। तो ये सब जो है ना भगवान की विशेषताएं हैं जो जीव में नहीं है। इसलिए केवल जन्म लेने से ये नहीं है कि भगवान जीव बन गए। और कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति अगर इसलिए भगवान को जो है जीव बताता है कि भगवान ने जन्म लिया, तो वो जो है मूर्ख है। इसलिए भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्, मूर्ख है। इसलिए प्रभुपाद जी भी जब मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो लोग कहते हैं आप साधु होकर के आप ऐसे शब्द क्यों प्रयोग करते हैं। तो प्रभुपाद के मैं नहीं बोल रहा हूं, कृष्ण बोल रहे हैं, मैं तो दोहरा रहा हूं। लोग सोचते हैं भाई साधु को मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये खराब शब्द है। लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं तो साधु का कार्य क्या है, भगवान की बात को दोहराना, भाई असली साधु होता है। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु। छह इंद्रियों, हाँ, इसमें सद गुणेश जो भगवान को बताया गया है कि वे छह इंद्रियों के स्वामी हैं, छह इंद्रियों के स्वामी हैं। छह इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पांच ज्ञान इंद्रियां और एक कर्म, एक मन। तो छह इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, है ना। इसलिए भगवान को ऋषिकेश भी कहा जाता है, ऋषिकेश भी है? भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? उससे 16 गुना, हाँ, संपत्ति। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से विमानम, सत सहस्र लक्ष्मी संभ्रम पूर्वक सेवा करते हैं भगवान की। भगवान कितने धनी हैं, है? कोई व्यक्ति जो है ना धनी होता है लक्ष्मी की एक कृपा दृष्टि से, एक क्षण के लिए लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है तो वो बड़ा धनी हो जाता है। लेकिन भगवान के पास सत सहस्र लक्ष्मियां, करोड़ों करोड़ लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं संभ्रम पूर्वक, यानी भयभीतों की सेवा करती हैं कि भगवान कहीं उनको सेवा से निकाल ना दें। लक्ष्मियां ऐसी सेवा करती हैं, ये भगवान का धन है।
आपको
हाँ आदि लक्ष्मी, जैसे कृष्ण को आदि पुरुष कहा जाता है, इसी प्रकार से राधा रानी जो है आदि प्रकृति है या सब लक्ष्मियों की स्रोत है। तो राधा रानी जो है ना कृष्ण की अर्धांगिनी है, तो ये जो ना कृष्ण का धन है। आपका कुछ प्रश्न है? खैर वो दूसरा विषय है। भगवान को मदन मोहन कहा जाता है, मतलब भगवान कामदेव को मोहित करते, इतने सुंदर है, और राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। लेकिन फिर भी कुछ और भी चीजें हैं जिसमें कि भगवान की जो है ना कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, और भगवान ये देखते हैं कि राधा रानी जो है ना मुझे देख करके जो आनंद लेती हैं, वो मैं नहीं आनंद ले पाता हूं राधा रानी को देख करके, तो मुझ में क्या ऐसी विशेषता है, वो देखने के लिए भगवान राधा भाव स्वीकार करते हैं। राधा रानी कृष्ण का दर्शन करके जो आनंद लेती हैं, वो आनंद ज्यादा है जो कृष्ण राधा रानी का दर्शन करके लेते हैं। तो राधा रानी जो आनंद लेती हैं, वो कृष्ण जाना चाहते हैं वो कैसा आनंद है, मुझमें ऐसा क्या चीज है जो कि राधा रानी ज्यादा प्राप्त करती हैं मेरे से, इसलिए वो राधा भाव को स्वीकार करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ इनका प्रश्न है कि जब भगवान आते हैं तो सबको आकर्षित करते हैं, फिर क्या कारण है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान को। भगवान आकर्षित करते हैं, लेकिन जो जो है भगवान के निकट आए, और कई रसों में भगवान आकर्षित करते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब भगवान कंस के रंगमंच में आए तो आकर्षित कर रहे थे, और अनेक प्रकार के रसों में भगवान सबको आकर्षित कर रहे थे, बीभत्स रस में भी आकर्षित कर रहे थे कुछ लोगों को, जो मूर्ख थे, जो कृष्ण को साधारण व्यक्ति मान रहे हैं, तो बीभत्स रस में भी आकर्षित करते हैं। बीभत्स का मतलब बहुत बुरा, कृष्ण को बहुत बुरा मान रहे हैं, उसमें भी कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं। वो कृष्ण को बुरा मान रहे हैं कि कैसे उद्दंड बालक है ये, राजा कंस को प्रणाम भी नहीं किया, ऐसे घुसाए सभा में। और फिर इससे भी ज्यादा वो उद्विग्न हुए कि कृष्ण बलराम दोनों कोबलिया पेट के जो हाथी था उसके दांत, खून से सने हुए दांतों को अपने कंधे में रख करके आए, घुसाए। तो ये बालक बड़ा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं यहां पर। तो वो जो है एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह, मतलब भगवान आए वहां तो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं भगवान से, इस तरह से आकर्षित करते हैं। शिशुपाल आकर्षित होता था भगवान से, बड़ा डिस्टर्ब होता है। कंस भी आकर्षित था भगवान से, इसलिए डिस्टर्बेंस, एक बड़ा डिस्टर्बेंस कर दिया कंस को उसने। अब वो सो नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, और दिन रात कृष्ण का चिंतन कर रहा है भय के कारण। तो ईर्ष्या के कारण भी जो ना लोग आकर्षित होते हैं भगवान से, भय के कारण आकर्षित होते हैं, शत्रु के रूप में आकर्षित होते हैं। तो कृष्ण के समान शत्रु भी कोई नहीं है।